नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक अद्भुत उद्बोधन है, देवत्व का स्वरूप। और जैसा पूज्य गुरुदेव ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में किया, हम भी वहीं से शुरू करते हैं, गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हमारा मकसद आज ये है कि पूज्य गुरुदेव ने जो देवत्व का विचार समझाया है, उसको ठीक से समझें। मतलब ये है क्या असल में, और असुरत्व से ये कैसे अलग है, और वो जो अंदर एक कश्मकश चलती रहती है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए पूज्य गुरुदेव की परिभाषा से ही शुरू करते हैं। वो देवत्व को व्यापकता कहते हैं, यानी अपनेपन के दायरे को फैलाते जाना, छोटी सोच मतलब संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठना। ये विचार ही अपने आप में कितना गहरा है ना, सिर्फ अच्छा होना नहीं बल्कि खुद को दूसरों में देखना।
बिल्कुल सही कहा आपने, स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि जिसका मन देव प्रवृत्ति का है, वो व्यक्ति अपना श्रम, अपना समय, प्रतिभा, जो भी उसके पास है, धन प्रभाव, उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करता बल्कि सबकी भलाई के लिए, सबके हित के लिए करना चाहता है। ये एक तरह से स्व से सर्व की तरफ जाना है, और इसके ठीक उलट है असुरत्व। वो क्या है? वो बस फौरी इच्छाएं, मतलब जो एकदम सामने दिख रहा है, इंद्रिय सुख, पैसा, दिखावा, भोग विलास, इसी में लगा रहता है। उसकी दुनिया बस मैं और मेरा, यहीं तक है।
हाँ, और यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही मतलब कमाल की बात कहते हैं कि ये जो देवत्व और असुरत्व की लड़ाई है ना, ये सिर्फ बाहर दुनिया में नहीं है, ये तो हर पल हमारे अपने अंदर चल रही है लगातार। इसे ही उन्होंने देवासुर संग्राम कहा है। मुझे वो खाने की थाली वाला उदाहरण एकदम याद आ गया कि भाई सामने स्वादिष्ट खाना है पर सेहत के लिए खराब है, दूसरी तरफ सादा खाना है पर पौष्टिक है, क्या चुने? यही तो है संग्राम, हर पल का चुनाव।
हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। स्रोत में बहुत साफ लिखा है, ये संघर्ष जीवन के हर कदम पर है। जैसे पैसा कमाना है तो ईमानदारी से कमाएं या बेईमानी से, कोई काम करना है मेहनत करें या आलस में पड़े रहें, हमारे विचार उनमें अच्छे ऊंचे आदर्श हों या बुरे ख्यालात, हमारा बर्ताव संयम रखें या असंयमित हो जाएं। और ये सिर्फ हमारी अपनी बात नहीं है, गुरुदेव कहते हैं यही संग्राम समाज में, देश में, हर स्तर पर चल रहा है। हमारा हर एक विचार, हर एक काम, वो हमें इस अंदरूनी महाभारत में किसी न किसी तरफ खड़ा कर देता है, जाने अनजाने।
ये सोचना ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि हर कान हर सोच एक चुनाव है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, दुनिया में देखें या अपने अंदर ही जाके, तो लगता है कि बुरी ताकतें मतलब आसुरी प्रवृत्तियां ज्यादा हावी हो रही हैं। फिर भी पूज्य गुरुदेव बड़े विश्वास से कहते हैं कि नहीं, देवत्व की शक्ति असल में कहीं ज्यादा है।
वो कहते ना, सत्य में हजार हाथियों का बल होता है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है कि जैसे एक चोर है, वो खुद चोरी करता है पर वो भी चाहता है कि दूसरे लोग उसके साथ ईमानदारी से पेश आए, है ना? या कोई मान लीजिए व्यभिचारी पुरुष है, वो भी अपने परिवार में, अपनी पत्नी, बच्चों में सदाचारी देखना चाहता है। हाँ, ये उदाहरण बहुत कुछ दिखाता है। ये बताता है कि हमारी अंतरात्मा मतलब अंदर की आवाज, वो स्वाभाविक रूप से अच्छाई का, देवत्व का ही पक्ष लेती है, चाहे हमारा बाहरी आचरण कैसा भी क्यों ना हो, अंदर कहीं गहरे में वो सच्चाई मौजूद है। इसीलिए स्रोत कहता है कि असुरों की जीत अगर कभी हो भी जाए तो वो टिकती नहीं है, वो अस्थाई होती है, क्षणिक। हम अगर अपनी प्राणों की कथाएं भी देखें, उनमें क्या होता है, लड़ाई होती है, देवता हारते भी हैं कई बार, लेकिन अंत में स्थापना तो देव शक्तियों की ही होती है। बुराई कुछ समय के लिए हावी दिख सकती है पर स्थायी जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है।
अच्छा, तो अगर देवत्व इतना शक्तिशाली है और हमारी अंतरात्मा भी उसी का साथ देती है, फिर भी ये अंदर की लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों लगती है कई बार? इस देवासुर संग्राम में पक्की जीत कैसे हो? पूज्य गुरुदेव यहां एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ईश्वरीय विशिष्ट सहायता, जो सत्साहस के रूप में मिलती है। ये थोड़ा समझने वाला है, सत्साहस।
हाँ हाँ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। सत्साहस मतलब सही के लिए हिम्मत। जब किसी इंसान के अंदर अच्छाई के लिए एक बहुत मजबूत इच्छा जागती है, जब वो अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाता है, चाहे वो बिल्कुल अकेला पड़ जाए, तो असल में वही ईश्वरीय सहायता का प्रकट होना है। पूज्य गुरुदेव यहाँ ये भी साफ करते हैं कि ईश्वर कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, एक चेतना। जब दुनिया में या हमारे अंदर बुराई विकृति बहुत बढ़ जाती है तो संतुलन बनाने के लिए यही दिव्य चेतना साहस बनकर उभरती है, व्यक्ति में या समाज में। इसी को अवतरण भी कहा गया है, मतलब अच्छाई को फिर से स्थापित करने वाली शक्ति का सामने आना।
अरे वाह, मतलब ईश्वर की मदद कोई बाहर से आने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर सही के लिए लड़ने की हिम्मत बनकर आती है। ये तो बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। तो फिर कुल मिलाकर देखें तो पूज्य गुरुदेव के इस पूरे उद्बोधन का सार यही निकलता है कि देवत्व और असुरत्व का ये जो संघर्ष है, ये हमेशा चलने वाली सच्चाई है, हमारे अंदर भी और बाहर संसार में भी। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम होश में रहकर समझ बूझकर देवत्व का पक्ष चुने अपनी तरफ से।
बिल्कुल, और शायद इसी बात पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि अपनी रोज की जिंदगी में, अपने छोटे छोटे फैसलों में इस देवासुर संग्राम को कैसे पहचाने। क्या हम ये देख पाते हैं कि कब हमारा कदम देवत्व की तरफ है और कब असुरत्व की तरफ? और अगर पहचान लेते हैं तो फिर उस देवत्व वाले पक्ष को और मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं?
शांति ही।